गोपाद की श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौनिताय की श्री गोपाद की। तो परसों राधाअष्टमी है तो तीन दिन हम लोग राधाअष्टमी कथा करेंगे। तो आज तत्व के बारे में बात करेंगे, कल रामरूप प्रो लेक्चर देंगे, लीला बताएंगे और परसों मुकुंद माधव प्रो लेक्चर देंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद आदि लीला फोर्थ चैप्टर 60th वर्स। हलदिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादना हलदिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादना हलदिनीर द्वार करे भक्तिर पोषण हलदिनी द्वार करे भक्तिर पोषण हलदिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन हलदिनी द्वार करे भक्तिर पोषण शब्दार्थ हलदिनी हलदिनी शक्ति कराया करवाती है कृष्णे भगवान कृष्ण में आनंद आस्वादन आनंद का आस्वादन हलदिनी द्वारा हलदिनी शक्ति द्वारा करे करती है भक्तेरा भक्त का पोषण भक्तेरा भक्त का पोषण पोषण अनुवाद तथा तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। थोड़ा बड़ा है तात्पर्य, डेढ़ पेज का, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री राधा तत्व को प्रभुपाद जी ने इसमें उजागर किया है, इसलिए हमने सोचा कि इसको पढ़ेंगे और फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। अनुवाद। यह हलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में हलादनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। वह कौन सा आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं, और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता, जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती है। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है, अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अंतरंगा शक्तियां हैं, हलादिनी शक्ति या आनंद प्रदायनी शक्ति, संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं संवित शक्ति या ज्ञान शक्ति। विष्णु पुराण में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है, हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं, हलादिनी, संधिनी तथा संवित, ये तीन गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान हैं, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं आप में नहीं है, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। हलादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। चूंकि यह हलादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सतोगुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य हलादिनी शक्ति से युक्त होते हैं। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में, अब देखिए हलादिनी शक्ति भक्त में कैसे होती है, जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की लादनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की अलादनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य अलादनी शक्ति का प्रदर्शन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनके लादनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक लादनी शक्ति की विविधता के बीच भेद को नहीं समझ सकते। यह लादनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणारघुनाथाम्बितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च नमोऽं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो शास्त्र में अलग अलग तत्वों की विवेचना है और सबसे गुह्य तत्व में तीन तत्व आते हैं, शिव तत्व, गुरु तत्व और श्री राधा तत्व। ये तीन तत्वों को समझना ऑलमोस्ट असंभव है, इसीलिए इस पे इतना चर्चा होता है लेकिन समझ में नहीं आता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आता। ये ज्ञान नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का जो जाके हम ले लें, ये प्रकाशित होता है गुरु और साधु के आशीर्वाद से। तो आज ये राधा तत्व को मैं थोड़ा पढ़ा और समझने का और प्रयास करूंगा, तो उसके लिए आप सबों का आशीर्वाद चाहिए और स्पेशली महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए, सभी वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए कि इस तत्व को कुछ तो ऊपर ऊपर से थोड़ा सतह से हम लोग समझ सके कि क्या है ये, एटलीस्ट इतना समझ सकें कि अपराध न करें, क्योंकि अपराध हमें श्रीमती राधा रानी से दूर ले जाएगा। संसार में बहुत लोग अपराध करते हैं इन तत्वों पे। आप देखिए, गुरु तत्व पे अपराध होता है, शिव तत्व पे अपराध होता है, राधा तत्व पे अपराध होता है। कम से कम हम ये समझ सकें कि अपराध क्यों नहीं करना है, उतना भी समझ सके तो बच जाएंगे, है ना। गुरु का पोजीशन नहीं पता संसार में, कोई भगवान मानता है, कोई गुरु को पूछता ही नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, शिव को भी नहीं समझ में आता, और वैसे ही ये भक्ति तत्व या राधा तत्व समझ में नहीं आता। इसीलिए लोग कहते हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे अपने एक लेक्चर में कि वो अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे और एक माता जी आई, भक्त नहीं थी बट भारतीय थी, तो इतना दुर्व्यवहार, इतना बदतमीजी से उन्होंने ये पूछा कि ये जो किशन है, किशन पंजाबी थी, कृष्ण नहीं बोलते किशन बोलते हैं, ये जो किशन है ये राधा को क्यों रखता है अपने साथ, इसकी पत्नी तो रुक्मणी है ना। तो महाराज बड़े क्रोधित हो गए, ये कैसे अपराध कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये क्या है, क्यों हम राधा कृष्ण का पूजा करते हैं। रुक्मणी द्वारकाधीश भी है इस्कॉन में कुछ जगह पे, तो लोग अपराध करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये जो है, वो समझते हैं कि एक लड़का लड़की, जवान लड़का लड़की का मिलन है जो काम से प्रेरित है, ये काम नहीं है, शुद्ध प्रेम है, तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो अलादनी शक्ति क्या है, अलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति है। तीन शक्तियों का वर्णन है, संधिनी, संवित और अलादनी। कृष्ण की अनंत शक्तियों में ये तीन कैटेगराइजेशन है। तो संधिनी शक्ति क्या करती है, जो भी सत्य है, जो भी हम देखते हैं, इसको प्रकट संधिनी शक्ति करती है। क्योंकि कृष्ण डायरेक्ट कुछ नहीं करते, शक्तियों के द्वारा करवाते हैं सब काम। कृष्ण जो भी कार्य करते हैं भगवान, वो शक्ति के द्वारा करवाते हैं। तो संधिनी शक्ति जो सत है, सत चित आनंद बोलते हैं ना, तो सत मतलब जो एग्जिस्टेंस है वो संधिनी शक्ति का कार्य है। संवित जो है वो ज्ञान का कार्य करती है। भगवान जो भी ज्ञान प्रकट करते हैं वो संवित शक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं। और अलादनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति, भगवान को जब आनंद चाहिए, भगवान तो आनंद घन है, तो भगवान को जो आनंद मिलता है वो कौन दे सकता है? लादिनी शक्ति। और ये मैंने पहली बार पढ़ा ये परपट में कि भक्तों में जो कृष्ण प्रेम जागृत होता है वो भी लादिनी शक्ति है। कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन छूट जाता है, इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए प्रचार करना चाहिए। क्लास देने के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो ज्यादा डीप में जाना पड़ता है। तो इसी बात को यहां पे श्लोक में बताया गया है, हलादिनीर द्वारा करे भक्तेरा पोषण। भक्तों का पोषण कौन करती है? श्रीमती राधा रानी। हमारी भक्ति को कौन बढ़ाती है? श्रीमती राधा रानी। कोई भी भक्त भी होना, वो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, कृष्ण स्वीकार नहीं करते सेवा को। हम सबकी सेवा को लेके गुरु परंपरा के द्वारा कृष्ण तक पहुंचाने का जो कार्य है वो राधा रानी करती है। हम नहीं कर सकते कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच। जैसे महाप्रभु जब संन्यास लिए जगन्नाथपुरी में तो बहुत सारे लोग आते थे, मैंने लिखा है थोड़ा देख लीजिए, महाप्रभु से स्टैंप लग जाएगा तो क्या होगा? हाँ, निमाई पंडित हैं, अभी संन्यास ले लिया है और दिग्गज हैं ज्ञान में भी और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, अगर वो स्टैंप लगा देंगे तुम्हारा पुस्तक अच्छा है तो अच्छा बिकेगा ना, फिर वो एंडोर्समेंट कराने आते हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु बोले मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये सारा एंडोर्समेंट का काम मैंने किसको दे दिया? स्वरूप दामोदर। वो क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करके भेजते। जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े व्यापारी और बड़े मतलब बहुत बड़े व्यापारी और सरकारी जो हेड्स होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अलग अलग देशों के, वो उनके पास हजारों ईमेल, हजारों फोन कॉल्स जाते हैं लेकिन उन तक एक या दो पहुंचता है, फिल्टर किया जाता है। तो श्रीमती राधा रानी हमारे अशुद्ध भाव को पोषण करके, यानी उसको शुद्ध करके पोषण करती है और शुद्ध भाव को कृष्ण तक पहुंचाती है। तो ये तीन शक्तियां हैं, उसमें आनंद देने वाली जो शक्ति है भगवान को वो अलादिनी शक्ति है। कुछ हम श्लोक तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ हम तात्पर्य अनुवाद पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है अलादिनी शक्ति का, और डिटेल में थोड़ा वर्णन है। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा अलादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा और कृष्ण अपने स्वरूपों में एक हैं, वो एक ही है, अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के बाएं तरफ से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और दाएं तरफ से श्री बलराम जी प्रकट हुए। ये सिर्फ हमको समझाने के लिए है, शास्त्रों में है लेकिन कैसा है, जैसे बताया जाता है शास्त्र में कि कुछ नहीं था पहले, कुछ भी नहीं मतलब सिर्फ भगवान थे और कोई नहीं था। भगवान ने सृष्टि बनाई और फिर गोवर्धन किनारे भगवान यमुना के पास बैठे थे, तब गोवर्धन के पास से यमुना बहती है, अब तो यमुना कितना दूर है, तो गिरिराज जी भी नीचे जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। वहां पे कृष्ण बैठे और बंसी बजा रहे थे, अकेले हैं क्या करेंगे, कोई है ही नहीं। फिर भगवान ने अपने लेफ्ट साइड में यमुना में देखा तो एक उनका छवि दिखा, जब व्यक्ति बैठा है तो छवि भी उन्हीं का रहेगा, लेकिन उनका नहीं था, एक स्त्री का रूप था और बड़ा सुंदर रूप था जिससे भगवान कृष्ण भी आकर्षित हो गए। तो भगवान ने उस रूप को प्रकट करवाया, वही श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसा नहीं, यह सिर्फ हमको समझाने के लिए होता है, क्योंकि हम जो हम कभी भी कुछ पूछते हैं, जैसे हमको कोई सेवा मिले तो तुम ये सेवा करो, तो जी कितनी देर तक करना पड़ेगा, हमारा टाइम बाउंडेशन है, कितनी देर तक करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, तो हमारा क्या है, हम भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल इसमें जीते हैं, लेकिन ऊपर काल के ऊपर जो है वहां पे ये टाइम नहीं है। हमारा कभी जन्म नहीं हुआ है, भगवान अजन्मे हैं, जीव भी अजन्मा ही है, कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जन्म होता तो मृत्यु भी होती, जायते ही ध्रुव मृत्यु, तो कभी जन्म हुआ है नहीं, हम शुरू से ही हैं, कहां हैं वो हम नहीं उसमें जा रहे हैं, लेकिन हम शुरू से रहे तो फिर कैसे राधा रानी शुरू से नहीं है। बट हमको समझाने के लिए कि कृष्ण ओरिजिन है सबके, ऐसा प्रदर्शन किया गया। और राइट साइड से बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी को बोले जाओ, पूरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और भौतिक जगत और सब जगह सब कुछ आप बनाओ और सबको पकड़ पकड़ के ले आओ, तब तक मैं इधर वृंदावन में लीलाएं करता हूं। बलराम जी गुरु हैं, वो जाके लेके आएंगे। फिर भगवान ने अपने ही विस्तार किया, जो गोप हैं, और राधा रानी ने विस्तार किया गोपियों को। अब इसमें बताया जाएगा और वृंदावन कैसे विस्तारित हुआ। तो जो लोग सोचते हैं, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि अकेले में क्या आनंद आएगा, इसलिए भगवान ने दो रूप में किया, और जब दोनों रूप पुनः मिल गए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो इसमें काम तो आ ही नहीं सकता। प्रभुपाद ने जो अभी हमने तात्पर्य पढ़ा उसमें तो क्लियर लिखा कि जो भौतिक शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, माया शक्ति, वो तो कभी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती ना, भगवान कैसे आकर्षित होंगे उससे, जिसको भगवान स्पर्श भी नहीं करते उससे आकर्षित कैसे होंगे, दूर रखते हैं भगवान उसको। जब भगवान बहिरंगा शक्ति से आकर्षित नहीं होते तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो काम जो है वो तो बहिरंगा शक्ति का प्रोडक्ट है, तो कृष्ण में कैसे काम हो गया। जो लोग सोचते हैं कि ये राधा कृष्ण जो हैं, ये युगल जोड़ी, ये तो ऐसे एक जैसे नवयुवक और नवयुवती जो होती है उनका जोड़ी जैसा है, अरे वो संसार में जो देखते हैं वो काम है, और जो आध्यात्मिक जगत में वो प्रेम है, और प्रेम की जो परिकाष्ठा है वो श्रीमती राधा रानी है। तो फैक्ट्री है अलादनी शक्ति, तो पूरा आनंद दे देती है, यानी वो फैक्ट्री है प्रेम बनाने की। हमको भी कभी भविष्य में कृष्ण प्रेम मिलेगा, या जिसको मिल गया होगा वो वहीं से आ रहा है, अलादनी शक्ति से। तो यहां पे कहते हैं किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया, शाश्वत रूप से, ऐसा नहीं कि एक होते हैं फिर दो होते हैं, एक होते हैं दो होते हैं। अगर शास्त्रों में और जाएंगे तो समझ में आएगा, गोलोक वृंदावन अलग है, ब्रज अलग है। गोलोक वृंदावन के चार भाग में बांटा गया है, उसमें से एक मायापुर है, नित्य मायापुर है वहां पे, तो महाप्रभु भी नित्य है। ऐसा नहीं कि महाप्रभु वहां पे नहीं है और राधा कृष्ण है और यहाँ पे वो एक होके आ गए महाप्रभु के रूप में, और महाप्रभु का उधर है ही नहीं रूप, नित्य शाश्वत रूप है। ब्रज में जो गोलोक वृंदावन के ब्रज वाले भाग में, वहां पे श्री श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान है। एक बार वर्णन आता है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को ढूंढने निकलती है, सिर्फ उनका रथ का वर्णन, वो 800 योजन ऊंचा है रथ, और डायमीटर कितना है रथ का? रथ गोल है, उसका डायमीटर कितना है? 1 करोड़ योजन। इतना तो राधा रानी का रथ है, उसके अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ लेना। तो हमारी समझ से बाहर है, इसलिए हम उसको ला ही नहीं रहे, समझ से ही बाहर है। ऐसा कैसा प्रभु जी, वृंदावन की तो सकरी सकरी गलियां है और साकरी खोर है उधर, इतना सा इधर, इतना बड़ा रथ कैसे चलाते हैं? तो हमारी समझ से परे है, तो इसलिए हम उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं अभी। श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। ये श्लोक स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी में से लिया गया है। अब यहां पे बताते हैं, राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने 2 शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि हलादनी शक्ति जो है वो आनंद देने के लिए है। तो कैसे आनंद दे? प्रभुपाद जी कहते हैं ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। ये इंग्लिश स्टेटमेंट है लेकिन एग्जैक्टली सही है श्रीमती राधा रानी के केस में। वैरायटी जो है वो मदर ऑफ एंजॉयमेंट है, जो आनंद देने की माता है वो वैरायटी है। तो अब यहां पे देखो क्या लिखा है, कृष्ण के माता पिता धाम गृह शैया आसन इत्यादि सब शुद्ध रूप शुद्ध सत्त के रूपांतर हैं। तो इसमें बताते हैं, कृष्ण के माता पिता के अतिरिक्त उनका सारा साज सामान भी संधिनी शक्ति की अभिव्यक्ति या विशुद्ध सत्व का रूपांतर होता है। ये भी शक्ति का रूपांतर ही है। तो भगवत धाम में भगवान के दास दासियां, उनकी प्रियतमाएं, उनके माता पिता तथा अन्य सभी आध्यात्मिक अस्तित्व रूप संधिनी शक्ति के रूपांतर होते हैं। ये भी शक्ति के ही, भगवान के ही रूपांतर होते हैं। और चैतन्य चरितामृत में आगे ये भी बताया गया कि राधा कृष्ण दोनों ही भगवान हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और श्रीमती राधा रानी जो है वो सेवक भगवान है, कोई भेद नहीं है। तो हमारे मन में, क्योंकि हमारे मन में क्या भरा हुआ है, जो हमारा मन जो है ना, पूरा अबोमिनेबल सिनफुल प्रोपेंसिटीज जिसको बोलते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति है हमारे मन में, पाप भरा हुआ है, भोग करने की प्रवृत्ति है। तो आत्मवत मन्यते जगत, हम कैसे देखते हैं पूरे संसार को, ऐसे ही देखते हैं। तो भक्ति में आने के बाद भी शुद्ध होने में टाइम लगेगा, तब तक हमको ये समझना जरूरी है, नहीं तो हमसे भी क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि हम वर्शिप जो कर रहे हैं वो ऐश्वर्य में करें। ऐश्वर्य सेवा क्यों प्रभुपाद जी ने करने बोला? क्योंकि ऐश्वर्य सेवा श्री श्री लक्ष्मी नारायण का होता है। राधा कृष्ण का सेवा तो सिर्फ शुद्ध प्रेम से होता है। तो इसीलिए ऐश्वर्य में चलो, लगे रहो सेवा में, कुछ तो हो रहा है, प्रभुपाद जी हमको दिए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद ने क्या दिया है हमको। राधा रास बिहारी को गोलोक से यहां बुलाया प्रभुपाद ने और हम लोगों को सेवा में लगा दिया। अपना भाग्य की गणना करने बैठे तो जो है हमारा सर है वो चकरा जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर आप यहां से शुद्ध भक्त होके गोलोक वृंदावन ब्रज धाम पहुंच भी गए तो भी डायरेक्ट सेवा नहीं मिलेगा राधा कृष्ण का। पहले तो प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं कि पहले तो यहां पूरा शुद्ध हो जाओगे तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में भेजा जाएगा, जहां पे कृष्ण लीला करने के लिए आने वाले हैं, भौम वृंदावन, किसी दूसरे ब्रह्मांड में वहां आपका ट्रेनिंग होगा। यह मत सोचिए कि हो गया मेरा तो न्यू भक्त ट्रेनिंग कब छूटूंगा मैं, वहां पे भी ट्रेनिंग पूरा है, फिर पीला पहनाया जाएगा उधर, फिर ट्रेनिंग होगा वहां पे। प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं, वो ट्रेनिंग होता है, फिर आपका भाव जो है वो धीरे 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 इंटेंसिफाई हो जाता है। वहां पे गोपियां और मंजरियां ट्रेनिंग देती हैं या गोप सखा ट्रेनिंग देते हैं, जो भी आप हो, आप अगर पेड़ पौधा हो तो बड़े पेड़ पौधे आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका भाव विकसित होगा धीरे धीरे, फिर और ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जाके आप नित्य धाम पहुंचेंगे। और वहां पे भी आप डायरेक्ट नहीं मिलता है सेवा, वहां पे भी सेवा नहीं मिलेगा डायरेक्ट, बहुत ट्रेनिंग होगा। और यहां पे प्रभुपाद जी का जो अपार कृपा है, जिसका कोई गिनती नहीं कर सकते, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि यहां पे राधाराज बिहारी का डायरेक्ट सेवा मिल रहा हमको, ये प्रभुपाद जी है, ये गुरु का महात्मा है। हम सोच सकते हैं कि हम यहां बैठे हैं, रोज राधारास बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, जिनका सेवा नित्य सिद्धों को भी मुश्किल है, धीरे धीरे वो उनको मिलता है। भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि वहां पे आपको बोला जाएगा, जब भक्तिनाथ ठाकुर स्वयं बताते हैं उनका सेवा क्या है नित्य धाम में, चंदन घिसना, और चंदन घिस के उनको देना है, और वो पहुंचता है परंपरा से। और यहां पे हम बोलते हैं क्यों हम हायरार्की फॉलो करेंगे, अरे हायरार्की तो वहां पे भी फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ वहां पे शुद्ध है यहां पे अशुद्ध है वो अलग बात है। तो वहां पे भक्तिनाथ ठाकुर सेवा करके भेजते हैं, कभी कभी उनको मौका मिलता है चंदन लगाने का कृष्ण को, सोचिए भक्ति विनोद ठाकुर। और हम सोचते हैं कि हम जो हैं गोप और गोपी बन जाएंगे, तो ये समझ लाएं तो कम से कम राधा राज बिहारी को ध्यान पूर्वक नतमस्तक होकर प्रार्थना करेंगे, अच्छे से जप करेंगे। तो फिर यहां पे कुछ और श्लोकों में बहुत सुंदर यहां पे जो ये वर्णन किया गया है, श्री राधा ठकुराणी, क्या बोला गया है, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुराणी, वे समस्त सद्गुणों की खान हैं। ये वाला खान नहीं, सोने वाला खान, वाला खान है। तो बोलेंगे सरनेम कैसे चेंज हो गया। और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी, जैसे वो प्रश्न उठाया था उन्होंने महाराज को कि भगवान की पत्नी तो जो है वो रुक्मणी है, सत्यभामा है और अन्य है, तो क्यों हम श्री श्री राधा कृष्ण का सेवा करते हैं। तो जैसे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, वो ब्रज से बाहर नहीं जाते, तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी वहां पे रहती है, तो बाहर कौन जाता है, कृष्ण के विस्तार जाते हैं। और जैसे ही कृष्ण विस्तार करके जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए श्रीमती राधा रानी विस्तारित करती अपने आप को। राधा में जो धा, अलग अलग शब्दों का अर्थ होता है ना, तो एक शब्द आचार्य ने बताया धा का मतलब है, जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई, कृष्ण ने जब प्रकट करवाया, तुरंत दौड़ के जाने लगी कुछ सेवक ढूंढने के लिए, कुछ फूल लेके आऊं, कुछ लेके आऊं कृष्ण के लिए। तो हमेशा वो कृष्ण की सेवा में तत्पर होती हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जहां पे श्रीमती राधा रानी दृष्टि डालती है वहीं पे कृष्ण है। तो जब भगवान मथुरा जाते हैं तो भी वो जो है राधा रानी विस्तार रूप से जाती हैं, जब द्वारका जाते हैं तो रुक्मणी, सत्यभामा, ये सब राधा रानी के ही विस्तार है, चंद्रावली भी राधा रानी के विस्तार है। इस अनेक अनेक भक्ति पुरुषोत्तम महाराज तो कहते हैं 630 मिलियन गोपीज हैं, 63 करोड़, 630 मिलियन कितना होता है, 63 करोड़ होगा, तो इतनी गोपियां हैं, इसलिए हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते। और जब भगवान भौम वृंदावन में आते हैं तो 100 मिलियन गोपी आती हैं यहाँ पे सेवा करने, 10 करोड़। अरे प्रभु जी, इतना सा तो 84 कोर्स है, कैसे 10 करोड़ का आबादी बैठेगा? तो धाम जो है वो कैसा है, कमल के जैसा, वो जब चाहे खुल जाए, जब चाहे सिमट जाए, भगवान की इच्छा पे। तो भगवान जब नारायण के रूप में विस्तारित होते हैं तो वही श्रीमती राधा रानी का विस्तार होता है महालक्ष्मी के रूप में। महालक्ष्मी से ही वर लक्ष्मी आती हैं, कृपा लक्ष्मी आती हैं, राज लक्ष्मी जो राजाओं को धन देती हैं, राज लक्ष्मी वो तो राधा रानी के अंश का अंश का अंश का अंश अवतार है। और जैसे भगवान का वैभव विलास, वैभव प्रकाश, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, श्रीमती राधा रानी का भी ऐसे ही विस्तारित जो है वो कैटेगरीज, जहां रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे। ठीक, क्योंकि भगवान का सेवा करने का इनको इतना, यानी हम कैसे बताएं कि कुछ और है ही नहीं उनका जीवन, सिर्फ कृष्ण का सेवा करना और भक्तों का पोषण करना। तो हमारी भक्ति का पोषण कौन करते हैं? श्रीमती राधा रानी। अब कोई बोलता है कि ये क्यों प्रकट हुए राधा रानी से चंद्रावली, क्यों अपोजिट पार्टी और इतना ये सब क्यों, फिर मान लीला क्यों कर देती है राधा रानी? चंद्रावली कभी मान लीला में नहीं आती, राधा रानी मान लीला में होती, क्यों? वही बात है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। भगवान का आनंद बढ़ाने के लिए ये सारी लीलाएं होती हैं। रुक्मणी जी को जब द्वारका में भगवान बैठे होते हैं, जब भगवान के नाती पोते हो चुके होते हैं, तो क्या कहते हैं? देखो मैं तो भागा हुआ हूं, मैं ग्वाला हूं, मेरा तो जात का भी पता नहीं है, और सब बातें बताते, तुम चाहो तो दूसरा विवाह कर लो, दादी बन गई। अब भगवान बोल रहे तुम चाहो तो दूसरा विवाह कर, और फिर हम वो देखते हैं रुक्मणी कृष्ण संवाद, फिर रुक्मणी जी कैसे बताती हैं। तो वो भी भगवान कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था तुमको क्रोधित करने के लिए कि तुम थोड़ा मान करो, लेकिन नहीं, वो उनका भाव नहीं है क्योंकि वो चंद्रावली का अंश अवतार है। और सत्यभामा आप पढ़ते हैं कृष्ण बुक में, सत्यभामा राधा रानी का अंश अवतार है, वो भाव वही है। तो ये जो मान लीला होती है क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण को आस्वादन देने के लिए ये सारी लीलाएं होती हैं। ये नहीं कि कृष्ण जो है वो फंस गए, अभी क्या करूं, अभी तो हमारी सेविका जो है वो तो मान कर बैठी है तो मेरा सेवा कौन करेगा, चलो मनाते हैं। नहीं, ये कृष्ण को अच्छा लगता है। जैसे कृष्ण ने ही दामोदर लीला की रचना की पूरी, कि यशोदा मुझे डांटे, मैया मुझे डांटती नहीं है, मुझे डांटे, कोई तो मुझे डांटे, तो लीला का उन्होंने अरेंजमेंट किया। लेकिन लोग सिर्फ एक चीज को देखते हैं, जैसे कहते हैं ना संसारी लोग कि रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव जी का पूजा किया इसलिए शिव जी भगवान है राम नहीं, तो द्वारका में तो कृष्ण ने भी सुदामा का पूजा किया, चरण धोए, तो सुदामा को भगवान क्यों नहीं बोलते? सुदामा को भी भगवान बोलो। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, तो ये हमको समझना चाहिए और समझाना चाहिए। फिर कहते हैं श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, वे महाभाव की मूर्तिमंत स्वरूप हैं और सद्गुणों से सर्वोपरि हैं। भगवान कृष्ण की प्रिय प्रेमिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, अब इसमें बता रही हैं, लक्ष्मिया, रानिया और ब्रज की गोपिकाएं। जब भगवान विष्णु अवतार होते हैं, नारायण अवतार होते हैं, तो अलग अलग अवतार में लक्ष्मी उनके साथ होती है, और जब भगवान द्वारकाधीश हैं तो रानियां उनके साथ हैं, और जब भगवान ब्रजेंद्र नंदन है तो गोपिकाएं, गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेमिकाएं राधा रानी का विस्तार है। जब सिर्फ भगवान को आनंद देने के लिए, तो जब ये संसारी लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं कि रासलीला में भगवान दूसरे की पत्नियों के साथ नृत्य किए हैं, तो वो जानते नहीं वो सब राधा रानी की ही अंश है। भगवान के लिए कोई दूसरा नहीं है, सब अपने ही हैं, सब उनसे ही प्रकट हुए हैं, उन्हीं का सब है। फिर कहते हैं, जिस प्रकार स्तोत्र रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं के कारण है। जैसे भगवान कारण होते हैं जो भी उनके अवतार होते हैं, वैसे श्रीमती राधा रानी जो है वो इनका कारण है। लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब हैं। लक्ष्मियां जो है अंश अवतार हैं राधा रानी के, सारा तत्व तो क्लियरली दिया हुआ है, और जो रानियां हैं वो प्रतिबिंब है। तो जितना कृष्ण अवतारित लेते हैं उतना राधा रानी अवतारित होती। लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश हैं, और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। रानियां उनके वैभव प्रकाश रूप को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, ब्रज देवियां के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं, वे श्रीमती राधा रानी का विस्तार है और रस का पोषण करने में सहायक है। वो डायरेक्ट एक्सपांशन है श्रीमती राधा रानी का, क्योंकि कृष्ण का डायरेक्ट सेवा करना है उनको। तो ये तत्व हम जब समझते हैं तो हमको थोड़ा ना ऐश्वर्य भाव भी आता है, जो जरूरी है। नहीं तो हम उतना, कई बार होता है ना कि स्पेशली हम जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो कृष्ण के बारे में सुनते हैं, हालांकि श्रीमती राधा रानी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन कई बार कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते हम सोचने लग जाते हैं कि तो कृष्ण तो हमारे साथ ऐसे बस इन्हें बहुत समान रूप से ले लेते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे, कभी कभी कृष्ण का विराट रूप का दर्शन भी सुनना चाहिए, तब पता पड़ेगा कृष्ण कौन है। नहीं तो हम सोचते रहते थे कृष्ण हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है। जगन्नाथपुरी में वो तो साख्य भाव है ना, लेकिन सब लोग वही इमिटेट करते हैं। क्या सीरियसली हमारा उतना लेवल है? इसीलिए प्रभुपाद ने कहा, इस भौतिक संसार में सिर्फ एक ही रस है भक्तों के लिए, वो है दास्य रस। और वो भी कहां है हमारा, उसके लिए भी तो हम लोग सेवा नहीं कर पा रहे। तो ये समझेंगे तो पता पड़ेगा श्रीमती राधा रानी कौन है। अब ये पूरा टेक्निकल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, काम और प्रेम का अंतर बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहां पे। गोपियों का प्रेम को रूढ़ भाव कहा जाता है, यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है, यह कभी भी काम वासना नहीं होता। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि गोपियों के हृदय में काम जागृत हुआ कृष्ण के प्रति, लेकिन अगर एक साधारण लॉजिक से भी देखा जाए, और वो श्लोक आएगा कि कृष्ण के प्रति जो भी जागृत हुआ वो काम कैसे हो सकता है, क्यों, काम तो भौतिक है। और कृष्ण के प्रति जो प्रेम, जो जागृत हुआ भाव, वो तो प्रेम होगा। तो कहने के लिए बताया गया है कि वो काम है, लेकिन जैसा काम हम इस संसार में सोचते हैं वो वैसा काम नहीं है। कहते हैं यहां पे, गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं, कैसे हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास शिरोमणि है, जो स्त्री को प्रणाम करने के लिए भी अनुमति नहीं है डायरेक्ट उनको, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन देते हैं इस पे। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका में जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो वुमन एम्पावरमेंट और ये जेंडर बायसनेस चालू हो गया था, प्रभुपाद के ऊपर भी आया था न्यूज़पेपर में कि स्वामी इज सेइंग लाइक दैट। प्रभुपाद कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये बताया गया शास्त्र में कि उनको कोई स्त्री प्रणाम नहीं कर सकती सामने से, तो ये नहीं कि स्त्री कम है पुरुष से, ये बात नहीं है, ये बात सन्यासी के ऊपर लागू होती है। तो क्योंकि महाप्रभु सन्यासी हैं, इसीलिए उनका लिए नियम यह है कि वो स्त्री सामने से प्रणाम नहीं करने चाहिए। प्रभुपाद जी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि स्त्रियों को दूर करो प्रणाम नहीं करना, नहीं, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, महाप्रभु बोलते हैं मेरे को अलाउड नहीं है। एक बार जयपुर में मैं क्लास देने गया, आईएएस की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, नया नया जोश होता है, सब आईएएस की तैयारी करते हैं। हाँ, तो 300-350 स्टूडेंट बैठे थे और मैंने सोचा कि एक जनरल लेक्चर ही तो देना है 45 मिनट का, और हमको गीता बेचनी है, मैराथन का टाइम था, बोला आखिर डायरेक्ट फिलोसॉफी देना, ये देना, कुछ आइस ब्रेकर किया जाए। तो आइस ब्रेकर में मैंने, आइस ब्रेकर मतलब चालू करने के लिए मैं कंट्रोवर्सी उठाता हूँ, अच्छा लगता है, कंट्रोवर्सी में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो अलग अलग कंट्रोवर्सी, 10 बैचेस थी, कभी मैं राम सीता का कंट्रोवर्सी ले लेता था, कभी कृष्ण का कुछ कंट्रोवर्सी ले लेता था, कभी द्रौपदी का कंट्रोवर्सी। क्या होता है, कान खुल जाते हैं संसार में मसाला ना, वैसा पूरा कान खड़े हो जाते हैं हमारे प्रजल्प और मसाले के नाम पे, और फिर हम तत्व से क्लियर करते। तो मैंने कहा कि आप में से कितने लोग बोलते हैं कि स्त्री पुरुष में भेद नहीं है? सब लोग बोलते हैं स्त्री पुरुष में भेद नहीं, वहां माताएं बैठी हैं, प्रभु बैठे हैं, सब बोले कोई भेद नहीं है। तो मैंने दो चार माताएं जी मान लो, बिल्कुल भेद नहीं ना, बोले बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल सही, शास्त्र ऐसे ही कहते रहते हैं स्त्री पुरुष में भेद है, स्त्री पुरुष में भेद है, बिल्कुल भेद नहीं होना चाहिए। तो अब तक क्या हुआ, सबके कान खड़े हो गए, है लाल कपड़े में लेकिन ऐसा बोल रहा है, शास्त्र में ऐसा बोला गया लेकिन ये सही है। फिर मैंने एक स्टेटमेंट, एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा अगर मैं धोती कुर्ते की जगह इस क्लासरूम में साड़ी पहन के आता तो आप लोग का रिएक्शन क्या होता? तो सब हंसने लग गए। मैं बोला भेद कर दिया ना आप लोग, तो ऐसे अज्ञानी लोग हैं। तो महाप्रभु इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वही महाप्रभु जो इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो ब्रजवास जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, हाँ, उनको उत्तम भक्त। सुखदेव गोस्वामी वो भी सन्यासी, वो तो मां के गर्भ से निकल के चल दिए, हाँ? लेकिन वो भी यही बोल रहे हैं। अच्छा, दक्ष की 60 कन्याएं, राधा गोविंद महाराज लेक्चर बताते हैं, उनका पूरा नाम, एक एक नाम लिखा हुआ है भागवतम में। क्यों सुखदेव गोस्वामी को जरूरत थी जो सन्यासी हैं, तो माताओं का नाम लेने की, हाँ? क्योंकि ये सब माताएं बनेंगी या पत्नियां बनेंगी भगवान के अवतार की या भगवान के शुद्ध भक्त। तो ये बात हमारा जो, हम जो दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में काम है, वो ब्रह्म संहिता में है ना, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना, हाँ? जब प्रेम का अंजन नहीं, अभी कैसा हमारा कामांजना चुरित अभक्ति विलोचने ना, अभी काम का अंजन लगा हुआ है। इसीलिए हम सब क्या देखते हैं, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो कामी पुरुष होता है वो हर जगह सिर्फ भोग देखता है, जो लालची पुरुष होता है वो हर जगह पैसा बनाने का सोचता है, और जो भक्त होता है वो हर जगह भक्ति देखता है, कृष्ण को देखता है। तो ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों मेटल हैं, दोनों पीरियोडिक टेबल में आते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। आप थोड़े बोलोगे सेम है, क्योंकि दोनों मेटल हैं तो दोनों सेम हो गए, तो फिर मैं आपको 1 किलो लोहा देता हूं, मेरे को 100 ग्राम सोना दे दो। और यहां पे ये बड़ा सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक चैतन्य चरितामृत में दिया गया, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों की, इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। तो श्रीमती राधा रानी, अन्य गोपियां, भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को नहीं, तो इसीलिए वो कैसा है, वो प्रेम है, वो शुद्ध है, वो काम नहीं हो सकता। जो भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अमृतसर में थे, प्रचार करने निकल गए सवेरे गुरु पूजा के बाद, और बाकी भक्त लोग बोले हम भी चलेंगे, प्रभुपाद बोले चलो, तो भक्त लोग थोड़ा टाइम लगा रहे थे, प्रभुपाद जी अपने ड्राइवर को बोले, सेक्रेटरी को बोले, गाड़ी में बैठो निकल जाओ, निकल गए। एक घर में पहुंचे, वहां कीर्तन सत्संग करके प्रवचन देके वहां से निकल गए, तब तक दूसरे भक्त पहुंचे, यानी दूसरी गाड़ी तब पहुंची, प्रभुपाद निकल गए। ऐसा करते करते प्रभुपाद ने 5 प्रोग्राम किए एक दिन में, अलग अलग घरों में जाके। रात को लगभग 9-10 बज गया था, वापस प्रभुपाद जी मंदिर पहुंचे या जहां पे वो रुके हुए थे, और कुछ नहीं खाए थे, कुछ भी नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खा के निकले। ये प्रभुपाद उत्साहित है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। तो प्रभुपाद के सर्वेंट बार बार पूछ रहे, प्रभुपाद कुछ खाए नहीं आपने, सेवक का तो भाव होना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि दिन ऐसा ही होना चाहिए, सवेरे उठो, अपना जप करो, भगवान का दर्शन लो, निकल जाओ प्रचार में, देर रात को आओ। और फिर प्रभुपाद ने बोला था कुछ बना के लाओ, तो प्रभुपाद ने क्या बनवाया था, बोले गरम गरम पूड़ी लाओ और उसके साथ मेरे को शक्कर दो और दूध दे दो। और प्रभुपाद जी शक्कर को ऐसे उठाते थे, पूड़ी के साथ खाते थे, दूध पीते थे। बोले बस यही यही भक्त का जीवन होना चाहिए, क्या बार बार खाना ही खाना, प्रभुपाद जी का स्तर है। हम तो संसार में जो बद्ध जीव हैं, वो बिना खाने के काम भी जागृत नहीं होगा, है ना, काम भी नहीं आएगा प्रेम का, तो छोड़ दो बात। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बोले, खिलाओ प्रसाद, तो प्रसाद ही एक सहारा है हमारा। टाइम हो रहा है, और अभी एकदम आईसीयू के स्टेज पे आ जाते हैं, 9 बजते ही हमारा एकदम आईसीयू वेंटिलेटर से ही हमको प्रसाद। बस 2 मिनट और, 1-2 श्लोक ले लेते हैं। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण का भोग का ध्यान रखता है और इसलिए अत्यंत शक्तिशाली होता है। ये शक्तिशाली क्यों बोला है आप, देखिए, कोई भी बद्ध जीव अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए प्रयास करता है। कितना मेहनत करना पड़ता है हमको अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और वो भी आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पता नहीं। भागवतम में उदाहरण आता है कि एक गिलास गाय का दूध पीने के लिए गाय को पालो, उसको खिलाओ, उसको घुमाने ले जाओ, बीमार हो तो उसका ध्यान रखो, एक गिलास गाय का दूध पीने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम में। तो हम रोज एक गिलास दूध पीते हैं तो सोचना चाहिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ? बेचारा 2 महीना गाय का दूध निकाला, हम लोग यहां पी रहे हैं आनंद में, तो कितना मेहनत होता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि दूध पचेगा कि नहीं पचेगा आपके पेट में। प्रभु जी पित्त हो रहा है दूध पीने से, तो संसार में अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, फल मिला तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, सुख मिला तो कितनी देर के लिए टिकेगा वो भी गारंटी नहीं, इतना मेहनत फिर भी हम लगे पड़े हैं, देखो हम कितने दृढ़ हैं। ऐसे ही हमको बोला जाता है तुम दृढ़ नहीं हो, यू आर नॉट डिटरमिंड फॉर भक्ति। यस, भक्ति के लिए दृढ़ नहीं है, लेकिन इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं संसारी लोगों की दृढ़ता को देख के मैं प्रेरणा लेता हूं, लेकिन कृष्ण का जब ये प्रेम प्रदर्शित हो, जब कृष्ण की आप इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए कुछ करते हो तो क्या होता है, जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण को सुख देना है, कृष्ण की तृप्तियों को तुष्ट करना है, तुरंत कृष्ण की सारी शक्तियां संचालित हो जाती हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाती है। और फिर आप जब कार्य करते हो तो बहुत जल्दी 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 रिजल्ट आता है। मूर्ख अज्ञानी क्या कहेंगे, देखो जब कृष्ण को अपने इंद्रियों को तुष्ट कराना था तो सारे अपने एजेंट भेज दिए, जाओ इसको हेल्प करो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जाएंगे तो होगा क्या, कृष्ण भी तुष्ट होंगे, हम भी तुष्ट होंगे, हम शुद्ध भी हो जाएंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा है। कृष्ण तो सिर्फ तुष्ट होंगे, हम तुष्ट भी होंगे और पुष्ट भी होंगे और शुद्ध भी होंगे। कृष्ण आपकी सेवा से कृष्ण पुष्टि नहीं मिलने वाली, कुछ क्या पुष्टि मिलेगी, कृष्ण पूरे संसार को पुष्टिवर्धनम, भगवान का तो नाम है पुष्टि, पुष्टि बढ़ाते हैं संसार की, हम क्या पुष्टि देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं आप भगवान का ड्रेसिंग करोगे आपके तुरंत मन को संतुष्टि मिल जाएगी। आप भक्तों को प्रसाद सर्व करो, हमने एक बार पहले बताया था ये टेस्ट है कि आपने अच्छे से सेवा किया है कि नहीं, अगर आप अच्छे से सेवा करोगे भक्तों को प्रसाद खिलाओगे और भक्त तृप्त हो गए तो आपको भूख नहीं लगेगी। अगर प्रसाद सेवा करने के बाद आपको भूख लग रही है मतलब हमने अच्छी चेतना से प्रसाद सेवा नहीं किया है, क्योंकि तुरंत तुष्टि पुष्टि मिल जाएगी जब आप भगवान को या भगवान के भक्तों को तृप्त करने का प्रयास करोगे तो, और शुद्ध हो जाएंगे, इसीलिए शक्तिशाली बताया। यह भगवान के प्रति, यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है, उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते हैं, काम घने अंधेरे की भांति होता है किंतु प्रेम चमकते सूर्य समान होता है। इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम का रंच मात्र गंध भी नहीं है, कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र कृष्ण के सुख के लिए है। और ये पूरा चैप्टर है लेकिन हमारे पास समय नहीं। तो जो भी लीलाएं होती हैं कृष्ण को सुख देने के लिए होती हैं, लेकिन इसमें आता है आगे चल के एक, जब गोपियां कृष्ण को सुख देती हैं तो कृष्ण का सुख जितना होता है, प्रसन्नता होती है, जब भगवान और गोपियां आमने सामने आते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन गोपियों की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता से 1 करोड़ गुना ज्यादा होती है। कितना, 1 करोड़, 10 मिलियन टाइम्स, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कोटि, 1 करोड़ गुना गोपियों का आनंद ज्यादा होता है। कृष्ण बोलते ये कैसे हो रहा है, समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं ना, रासलीला के में आई थी तो गोपियों क्या बोले, बोले मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना है, तुम उसी में खुश रहो, क्योंकि भगवान का सुख 1x और गोपियों का सुख 1 करोड़ x। तो देखो 1 करोड़ गुना फिर भगवान क्या देंगे। ब्रह्मा जी ने भी अपनी प्रार्थनाओं में कहा प्रभु आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, पूतना को तो दे दिए, इनको क्या दोगे ब्रजवासियों को, आप तो खाली हो। अब भगवान उसी बात को कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, और इसी को आस्वादन करने के लिए, इसीलिए ये जो चैप्टर है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का गुह्य कारण, उसी को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का, कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का अंग कांति और उनका भाव को चुरा लिया, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए गदाधर को आना पड़ा। राधा रानी बोली ठीक है, आप चुरा के लेके गए, आना तो मुझे ही पड़ेगा आस्वादन कराने के लिए फिर भी। तो गदाधर पंडित आते हैं, तो ये राधा तत्व जो है ये पूर्ण शुद्ध तत्व है और भगवान ही है ये श्रीमती राधा रानी। और हमको इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं माँ है, जगत जननी है, उनके चरणों में जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और वो प्रसन्न होती हैं जब आप कृष्ण का नाम लेते हो तो। लेकिन राधा रानी के नाम के बिना तो कृष्ण का नाम नहीं ले सकते ना, इसीलिए युगल मंत्र दिया गया। मैं पढ़ रहा था एक जगह, वृषभानु महाराज और कृतिदा, इनको पुत्र नहीं होता, कोई पुत्री नहीं होती, सालों सालों बीत जाते हैं, जैसे नंद बाबा यशोदा को। कीर्तिदा माता कहती है वृषभानु महाराज से कि आप कात्यानी व्रत क्यों नहीं करते, कात्यानी देवी की पूजा कीजिए। तो जाते हैं गोवर्धन के पास और कात्यानी देवी का पूजा चालू करते हैं। कात्यानी देवी प्रकट होती है और उनको हरे कृष्ण मंत्र देती है, लिखा हुआ एग्जैक्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र का नाम मैं भूल गया हूं, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट। हरे कृष्ण मंत्र वहां पे देती है कात्यानी देवी और यही कहती है कि 16 शब्दों का जो 16 शब्दों का जो नाम है ये कली के कलमश को खत्म करेगा। जैसे ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपचार नारद मुनि को दिया था, ये यहां पे दिया गया है। तो ये मंत्र हमको महाप्रभु ला के दिए। ये मंत्र कौन है? ये स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण जिनके बारे हमने बात किया, ये मंत्र वही है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अंश अवतार नहीं बोलते हैं, कृष्ण अवतार बोलते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण राधा कृष्ण है, उनका अंश नहीं है, ये पूर्ण है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये हरे कृष्ण जप करने मिला है। और करना क्या है? अपनी जीवा से इसको ध्वनि को प्रकट करना है और सुनना है, बस। चलो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताऊं क्या, एक मिनट में शुद्ध नाम क्या होता है? चलो 30 सेकंड बता देते। जब हम भगवान की सेवा करके नाम सुनते 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 शुद्ध हो जाएंगे, जब पूर्ण तरह शुद्ध हो जाएंगे, तब भगवान, ये भक्ति सिद्धांत जी पूरा डिटेल में लिखते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, उस शुद्ध भक्त के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, पूरे ऑर्गन्स को, पूरा बॉडी, सब चीज भगवान कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर भगवान पूरी शक्ति, पूरे प्रभाव के साथ, पूरे फोर्स के साथ उस भक्त के मुख से बाहर निकलते हैं और वहां वो कृष्ण स्वयं बाहर निकलते हैं। इसीलिए जब शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त नाम जप करते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि कृष्ण निकलना चाहते हैं और दूसरों को उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद का वाणी बहुत जरूरी है, प्रभुपाद का लेक्चर बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि कृष्ण बाहर निकल रहे हैं। यह शुद्ध नाम है, ये शुद्ध भक्तों का जप किया हुआ मंत्र है। तो ये हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, पता नहीं आप लोग क्या समझे। इतना समझ में आ गया कि श्रीमती राधा रानी कौन है वो समझना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम वो कोई साधारण नहीं है, ये समझ। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई टिप्पणी, कुछ प्रश्न? हाँ, हम शिवदन प्रो आया नहीं आज? यस, कृष्ण भजन प्रो भी कुछ ऐड कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, आपने जो स्टार्टिंग में बताया, अगर कोई जिज्ञासु है जैसे कि कृष्ण के साथ राधा जी है, लक्ष्मी जी क्यों नहीं है, रुक्मण जी क्यों नहीं है, अगर कोई बाहर का लोग प्रश्न पूछते हैं सुदामा का माता पिता का नाम क्या है, ये अपराध कैसे हुआ? मतलब अभी कोई जिज्ञासु है, कृष्ण के साथ राधा रानी है और कोई नहीं,
क्यों
नहीं?
जिज्ञासु हो सकते हैं, जिज्ञासु अपराधी नहीं होता, लेकिन महाराज बता रहे अपने लेक्चर में कि उस माताजी ने जिस तरह से, अभी मैं पूरा स्टोरी बताऊं क्या माता जी ने क्या शब्दों का प्रयोग किया, ये किशन जो है ना, ये राधा को अपने साथ क्यों रखता है? रखता है मतलब क्या है? रखता है मतलब समझता है आपको क्या बोल, किसको बोलते हैं रखता है मतलब? बहुत ही गंदा शब्द होता है ये, मतलब पत्नी और है किसी को रखा हुआ है, हम बोलना भी नहीं चाहते वो शब्द को। फिर महाराज ने कहा तुमको कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि वो अपराध हो गया उससे, तो महाराज बोलते तुमको कोई दिक्कत है क्या? तो उसका पति आ गया सरदार जी, दिक्कत क्यों नहीं है जी, दिक्कत है। फिर महाराज ने क्या बोला, अभी क्या बताऊं मैं आपको, क्योंकि भक्त कंट्रोल नहीं कर सकता, क्रोध होना चाहिए, यहां पे क्रोध प्रकट करना चाहिए। महाराज ने जो क्रोध पकड़ के और जो कहा उनको, जिज्ञासा अलग बात है, ये बोलने का तरीका होता है। जैसे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, जब कृष्ण ने कहा अर्जुन चौथे अध्याय में भगवद गीता के, यही ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया है, तो अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं चौथे श्लोक में आप पढ़िए, अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु हे कृष्ण मैं कैसे समझूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे समझूं आप बताइए कि आपने ये ज्ञान, क्योंकि आप तो मेरे साथ हैं। तो अर्जुन ने क्या लिया, मैं कैसे समझूं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यह जिज्ञासु का सबसे पहला परिपाते ना, सरेंडर तो करो फिर तो जिज्ञासा करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसा कैसा, अगर कृष्ण मान लो हम लोग को किसी को बोलेंगे बद्ध जीव को कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, अरे क्या ऐसा कुछ भी बोलते हैं आप, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपने क्या किया, कृष्ण पे डाउट किया, तो ये जिज्ञासा नहीं है, ये तुरंत आपने जजमेंट कर दिया कि कृष्ण गलत है। तो पूछने का तरीका होता है तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न न सेवया, प्रणिपात तो करो फिर तो प्रश्न पूछो। एक बार जयपतक महाराज ने प्रभुपाद जी की क्लास में पूछा था, हु श्रीमती राधा रानी, प्रभुपाद जी से पूछे तो महाराज का दीक्षा नहीं होती, Who are you to ask? महाराज खुद बताते, बोले पूरे कांप गए थे। फिर अगली बार प्रभुपाद फिर लेक्चर दिए, Where is भक्त जय? He asked nice question. अब महाराज वो रिकॉर्डिंग सुने वो लेक्चर का। तो ये भक्तों को समझना आसान नहीं, कम से कम जिज्ञासा के लिए हमारे परिपात होना चाहिए। यस प्रभु जी कुछ।
ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत दे, वो हमको अधीन नहीं रहते, वो हमारे भाव का उत्तर देते, किस भाव से प्रश्न पूछ रहे। जैसे प्रभुपाद को एक ने पूछा, प्रभुपाद इधर ही पूछा शायद जू में, बहुत चूहे हुए गए क्या करना है, प्रभुपाद क्या बोले, जब ठीक से करो। अभी चूहे का और जब का क्या संबंध है, लेकिन वो भक्तों को कुछ शिकायत ही करनी थी प्रभुपाद को, बारम्बार इधर रहना नहीं था, सबको जाना था छोड़ के, इतने चेहरे चूहे हो गए थे और बहुत सारे परेशानी थे, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि वो लोग, प्रभुपाद बोले उधर आप जब ठीक से करो, बाद में बोले कि डोंट यू वॉन्ट टू गेट प्यूरिफाइड, आपको शुद्ध नहीं होना है। तो शुद्ध भक्त जरूरी नहीं कि वो प्रश्न का उत्तर दे, वो उसके पीछे का भाव जानते हैं, किस भाव से वो कर रहे हैं प्रश्न, बराबर भाव को बराबर घाव डालते वो लोग ऐसा। इसलिए जो महाराज जी ने बोला वो माता जी को, उनका भाव जानना नहीं था, जिज्ञासा नहीं था उनका, जैसे प्रभु जी बोले कि चैलेंज करना था कृष्ण के चरित्र को, बराबर पूछे।
यस यस
हरे कृष्ण,
भाव को समझना, और वही इसीलिए जिज्ञासा करने से पहले प्रणिपात होना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। अब वेंटिलेटर का टाइम हो गया है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।
वंदेहं श्री